بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. आपको ये आयत सुनकर कुछ नहीं याद आया, किसी को नहीं आया, क्योंकि आपको किसी ने सुनाया जो नहीं. जी, जिस दिन आपका निकाह हुआ था ना, तो मौलवी साहब ने ये आयत पढ़ी थी. खुतबा निकाह में ये आयत होती थी. आप कहेंगे मैं तो सो के ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई थी और मुझे तो पता ही कोई नहीं, किसी ने कहा था साइन कर दो, मैंने कहा तुम ही कर दो, टाइम ही नहीं है. अल्लाह ताला माफ़ करे. चलिए 1 से 10, पहला रुकू. मुआशरे के कमज़ोर तबकात का हक ना मारो, ये है असल में ह्यूमन राइट्स, लेकिन हम मुसलमान पढ़ते नहीं तो हम दूसरों से इम्प्रेस रहते हैं. ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, इसी से उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी. इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते भी तोड़ने से बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगेबान है. अब आपकी बेटी अगर ये आयतें समझती होगी तो ससुराल में रहेगी ना, और जिस बहू को आप ला रहे हैं घर में, अगर उसको ये तकवा समझ आ गया तो मानेगी ना. यदि हम अपनी औलादों को कुरान का तर्जमा ना पढ़ाकर कितनी ज्यादती करें, कितने घर ना टूटते अगर लड़की और लड़के ने कम से कम तर्जमे के साथ कुरान पढ़ा होता. दो तकवों की बात है, एक अल्लाह के मामले में, एक बंदों के मामले में. आज हमारे यहाँ अल्लाह के मामले का तकवा तो बड़ा मशहूर है, लेकिन बंदों के मामले का तकवा मशहूर नहीं है. कोई मर्द अपनी बीवी का हक नहीं दे सकता जब तक तकवा ना हो. कोई बीवी शौहर का, कोई सास बहू का, और बहू सास का ख्याल नहीं रख सकती जब तक कि अल्लाह का खौफ ना हो. और यतीमों का माल इनको दे दो, और पाक और हलाल चीज़ के बदले ना पाक और हराम चीज़ ना लो, और अपने मालों के साथ इनके माल मिलाकर ना खा जाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है. अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना कर सकोगे, तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो, दो दो तीन तीन चार चार से. ये है वो आयत जिस पे मर्दों की बाछें खिल जाती हैं और औरतों की भवें तन जाती हैं, और मर्द कहते हैं वाह ये आयत जरा सुनाना आज पढ़ के आई हो, और औरतें कहती है छोड़े ना आपने बाकी कभी मुझसे कुछ पूछा है, मैं तो इस आयत को पढ़ते हुए गुस्से में थी. हालांकि बिलीव मी, ये दो शादियां तीन शादियां चार शादियां, लफ्ज़ शादी से बदनाम नहीं है, मर्दों की तरफ से होने वाली बेइंसाफी की वजह से बदनाम है. एक को लेकर हनीमून के नाते से और कहाँ से कहाँ फिर रहे हैं, और दूसरी बेचारी जल रही है खुल रही है. आज हमारे यहाँ दूसरी शादी कितना बड़ा नासूर समझा जाता है. तो ज़रा से इन आयतों को सुनकर इस्लाम का मिजाज समझिए. अल्लाह सुब्हान तआला ने पहले ही बता दिया, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो, ये जुमला सुना देंगे आप अपने मियाँ को, तो खौफ हो तो एक ही काफ़ी है, यानी मैं ही काफ़ी हूँ, मतलब ये है हा? या तुम्हारी मलकियत की लौंडी, ये ज्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफी और एक तरफ झुकने से बच जाओ, और औरतों को इनके मेहर खुशी से दे दो. हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ मेहर छोड़ दें तो इसे शौक से खुश होकर खाओ पियो. बेअकल लोगों को अपना माल ना दे दो, जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी गुजरान यानी जीने मरने गुजारा गुज करने के लिए इनके कायम रखने का जरिया बनाया है. हाँ, इन्हें इस माल से खिलाओ पिलाओ और पहनाओ उड़ाओ, और इन्हें माकूलियत से नरम बात कहो. अब यहाँ यतीमों के हकूक हैं, और यतीमों को इनके बालिग होने तक सुधारते और आजमाते रहो, फिर अगर इनमें तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो इन्हें इनके माल सौंप दो, और इनके बड़े हो जाने के डर से इनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चियों में तबाह न कर दो. मालदारों को चाहिए कि इनके माल से बचते रहें. हाँ, मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजबी तौर से खा ले, फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो. दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह ताला ही काफ़ी है. माँ बाप और ख्वेशो अकारिब यानी रिलेटिव्स के तरके में मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी. अब इस आयत के नंबर के साथ लिख लीजिए, विरासत के मुतल्लिक आयत है. जो माल माँ बाप और अजीज़ अकारिब छोड़ कर मरें, हाँ वो माल कम हो या ज़्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है, और जब तकसीम के वक्त किराबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो तुम इसमें से थोड़ा बहुत इन्हें भी दे दो, और इनसे नरमी से बोलो, और चाहिए कि वो इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नाती माँ बच्चे छोड़ जाते जिनके ज़ाया हो जाने का अंदेशा रहता है तो इनकी चाहत क्या होती. बस अल्लाह ताला से डर कर जची तुली बात कहा करें. जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं, और अन करीब वो दोजख में जाएंगे. अल्लाह अकबर कबीरा. देखिए, इतने हकूक तो कोई अपना वली भी नहीं बता सकता जो अल्लाह ने बता दिए. तो क्या पता चला सूरत निसा के शुरू से ही, ईमान वाला सिर्फ इबादात में ही नहीं بلکہ معاملات میں بھی اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے، بندوں کے حق لوگوں کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے ادا کرنے والا ہوتا ہے، وہ صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے اور معاشرے کے دبے ہوئے لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ پھر اس میں حق مہر کی بات ہوئی تو عمل کا نقطہ لکھیے، فیتھ ان ایکشن، حق مہر خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے اور یتیموں کا مال ناحق نہیں کھانا۔ ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں پتہ؟ عورتوں کو حق مہر کا نہیں پتہ، اور ہمارے یہاں آج کل حق مہر مانگنا ایسے جیسے طلاق مانگنا، جب رکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں 1 کروڑ لکھ دو، پھر دل میں کہتے ہیں دینا کس نے، $10,000 لکھ دو، کون دے گا؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں ان کی سمجھ آ جائے۔ آگے جی رکوع نمبر 2 میں 11 سے 14 وراثت کے مسائل، حیران ہوں گے آپ کی ساری دولت جو زندگی بھر آپ کماتے رہے، بھر بھر کے بینک رکھے ہوئے ہیں، لاکرز میں زیور ہے، پراپرٹیز ہیں، آپ کی فائلز کہیں لاکرز میں رکھی ہیں، اللہ نے صرف ایک رکوع میں سب صاف کر دیا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے، فیورٹ رکوع ہے میرا، کہ آپ کی وراثت کے موضوع کو اللہ نے اتنی 4 آیتوں میں ختم کر دیا کہ دنیا کیا اس کے پیچھے، لیکن ایک ایک کا حق دیکھیے ملے گا۔ ابھی سنیے گا ذرا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، آیت نمبر 11 سے 14، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 1/6 حصہ ہے، اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 1/6 حصہ ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا، اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، اس کی وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے 1/4 ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8/8 حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ ذرا اس پہ بھی غور کیجئے گا، وراثت میں سب سے پہلے قرض دیا جائے گا، جہاں قرض دیں گے وہاں ویسے ہی سب ختم ہو جانا ہے، کیونکہ قرضوں پہ تو ساری دنیا چل رہی ہے اس وقت، لیکن آپ ذرا حیران ہوں اللہ تعالیٰ کی اس بانٹ پہ۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کا لالہ ہو یا بھائی بہنوں کے حصے ہیں، یعنی ان کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ، اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے، اور قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے اور بردبار ہے۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی مقرر کی ہوئی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب کے حصے، ماں باپ کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے، پھر شوہر فوت ہو تو بیوی کا، بیوی فوت ہو تو شوہر کا، 5 آیتوں میں سب حساب جمع ہو گیا۔ سنیے اس کو بہت ڈیٹیل سے کرواتی ہوں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، جمع تفریق کر کے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ ذرا فیت ان ایکشن دیکھیے، وراثت کا علم علم الفرائض ہے، یعنی اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے، مال ہے، تو پھر تو یہ اور بھی مسٹ ہے۔ مال کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے، صرف عبادات نہیں بلکہ گھریلو، خاندانی اور مالی معاملات میں بھی اللہ کا حکم ماننا ہے، اور وراثت کی تقسیم انصاف سے کرنی ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے والوں میں شامل کر لے۔ آگے پارے کا اختتام ہونے کے قریب ہے، رکوع نمبر 3 آیت 15 سے 22، किसकी तौबा कबूल होती है? इसको आप लिख सकते हैं कि लेस्बियंस यानी होमोज की सजा कुरान ने आज से 1400 साल पहले भी बता दी, और ये इब्तदाई आयतें हैं जिना की सजा के नाजिल होने से पहले जो सूरत नूर में आएंगी इंशाल्लाह। वल्लाती यातीन अल्फाहिशत मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें इन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो, अगर वो गवाही दें तो इन औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत इनकी उम्रें पूरी कर दे, या अल्लाह ताला इनके लिए कोई और रास्ता निकाल ले। तुम में से जो दो अफराद ऐसा काम कर लें इन्हें ईज़ा दो, अगर वो तौबा और इस्लाह कर लें तो इनसे मुंह फेर लो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम वाला है। कल बच्चियों को लेकर आइए, यंग बच्चियां वीकेंड पे आएंगी, आप देख रहे हैं कि ये जितनी सूरत निसा, और इत्तफाक से कल सूरत निसा का वो हिस्सा आ रहा है जो शादी वली कोर्ट मैरिज उससे मुतल्लिक है, 5वें पारे के शुरू से ही है। तो जहां भी बात सुन रहे हैं आप लोग अपने साथ बच्चियों को लेकर बैठे, पर ये ना कहिएगा कि सुनो ये तुम्हारे लिए है। आगे तौबा के बारे में खूबसूरत आयत है कुरान की, अल्लाह ताला सिर्फ इन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी की वजह से कोई बुराई कर गुजरे फिर जल्द ही इससे बाज आ जाएं और तौबा करें, तो अल्लाह ताला इनकी भी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला हिकमत वाला है, इनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाएं यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तौबा की, और इनकी भी तौबा कबूल नहीं जो कुफर पर ही मर जाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। और फिर एक बार आपको आपके रब की फिर पुकार आई, ये पहली पुकार है सूरत निसा में, देखिए आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं और हमें पता ही कुछ नहीं। कितनी दफ़ा कुरान खानियों में तिलावतों में अपने रोज़ के सिपारे पढ़नों में हम ये आयतें सुनते हैं लेकिन टच से मस्त नहीं होते, क्योंकि वो कानों में हेडफोन लगे हो ना तो माँ की आवाज़ नहीं मिलती। सुनिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लुलकुम अन तरिसुन्निसा करहा, ऐ ईमान वालों तुम्हें हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के विरसे को ले बैठो, इन्हें इसलिए रोक ना रखो कि जो तुमने इन्हें दे रखा है इसमें से कुछ ले लो, हाँ ये और बात है कि वो कोई खुली बुराई और बेहयाई करें, इनके साथ अच्छे तरीके से रहन सहन यानी बूदोबाश रखो, वो तुम इन्हें नापसंद करो लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को बुरा जानो और अल्लाह ताला इसमें बहुत ही भलाई कर दे, और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो और इनमें से किसी को तुमने खजाने का खजाना दे रखा हो तो भी इसमें से कुछ ना लो, क्या तुम इसे नाहक और खुला गुनाह होते हुए भी लोगे? तुम इसे कैसे ले लोगे हालांकि तुम एक दूसरे को मिल चुके हो और इन औरतों ने तुम सहदों पे मां ले रखा है, और इन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया, हाँ मगर इल्ला मा कद सलफ, जो गुजर चुका सो गुजर चुका, और क्यों ना करो अपनी ही सौतेली माओ से निकाह, क्योंकि ये बेहयाई का काम है और बुग़्ज़ का सबब है और बहुत बुरी राह है। अपनी ही माँ से निकाह कर लेते थे बाप के मरने के बाद। अल्लाह ने औरतों के हकूक़ की बात कर दी, एक ही आयत है इसमें ईमान से मतलब। सूरत निसा की आयत देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लुलकुम अन तरिसुन्निसा करहा, क्या पता चला कि इस्लाम ने हर रिश्ते में औरत का मुकाम बुलंद किया है, यानी औरत माँ हो बहन हो बीवी हो बेटी हो वो बा इज्जत है। आज ये खबर पढ़ के आई हूँ किसी मुल्क के कानून में उन्होंने इजाज़त दे दी कि बहन और भाई का निकाह जायज़ है। अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी मेरी नस्लों ने जिस दुनिया में सांस लेना है ना उसमें अभी से तआफ़ुन फील हो रहा है, ये इस वक्त जो कुछ हालात हैं दुनिया के वो तो छोड़ दीजिए ना, औरत औरत मर्द मर्द वो तो पुराना हो रहा है, अब अगला टारगेट है कि भाइयों की शादियां बहनों से कराओ। अल्लाह अकबर, तो फेथ इन एक्शन, तौबा का दरवाज़ा बंद होने का इंतज़ार नहीं करना, गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कीजिए, दोबारा इस गुनाह को ना करने का अज़्म करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह पारा पूरा हुआ। आखिरी आयत जिसका अगली आयत से ताल्लुक़ है 5वें पारे की, उसको भी सिर्फ देख लेते हैं, आयत 23, किन औरतों से निकाह हराम है यानी मुहर्रिमात की लिस्ट। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, हराम की गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भाई की लड़कियाँ और बहन की लड़कियाँ, और तुम्हारी वो माएँ जिन्हें तुमने दूध पिलाया हो, और तुम्हारी रजाई बहनें और तुम्हारी सास और तुम्हारी वो परवरिश करदा लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में है, और तुम्हारी इन औरतों से जिनसे तुम मुबाशरत कर चुके हो, हाँ अगर इनके साथ तुमने ताल्लुक कायम ना किया हो तो इनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और तुम्हारे सुलभी बेटों यानी सगे बेटों की औरतें यानी बहुएं भी, और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है। हाँ मगर जो हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। क्या पता चला, पिछले मुर्दे मत खाड़ो, अल्लाह ने तुम्हें जो मौके दिए हैं उससे फ़ायदा उठाओ। तो क्या सीखा शायद से, और रिश्तों की हुरमत का ख्याल रखना है, अल्लाह के कानून की पाबंदी करनी है और खुश दिली से इस पे अमल करना है। आप ज़रा एक सेकंड के लिए सोचिए तो आप कांप जाएंगी। अगर महरम रिश्तों से निकाह हलाल होता तो घरों का माहौल क्या होता? आप इतने सुकून से यहाँ बैठी होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह पारे का टारगेट पूरा हुआ, आगे है जी ईमान की शाहें। याद रखे कि ये भी पारे का हिस्सा ही है। आज ईमान की 7वीं शाख करेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत तौर पे हम सबको अपना अमल बदलने पे माइल करेगी, और वो क्या है, मरने के बाद वाली जिंदगी पे ईमान रखना। ये नहीं कहो कि यू लिव वंस, यू लो नहीं है इस्लाम में, यू लिव वंस। और किसी ने कहा कि बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नहीं, ये गलती है उस शायर की, अल्लाह उनको भी माफ करे हमें भी। हम सब ने मरना भी और मरने के बाद दोबारा उठना है, ये ईमान की शाख है। कैसे? हमारा अकीदा है कि हमने एक दिन ये दुनिया छोड़ जाना है, मौत के बाद हमारी एक और ज़िंदगी शुरू होगी, क़यामत के दिन सजाओ जजा का हिसाब होगा यानी अमाल के मुताबिक होगा। कुरान कहता है सूरह तगाबुन आयत 7 में, ज़ामल्लसीना कफरू अल्लै युबअसू। ये तो कुफार का जोम है कि हम नहीं उठाए जाएंगे। कुल भला कह दीजिए क्यों नहीं, वरब्बी कसम है मेरे रब की, सुम्मा लतुब असुन्ना तुम दोबारा उठाए जाओगे, सुम्मा फिर उसके बाद क्या होगा, लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम वज़ालिकल्लाही यसीर, फिर तुम्हें ज़रूर इसकी खबर दी जाएगी जो तुमने अमल किए, और ये सब अल्लाह पे बहुत आसान है। क्या पता चला, अल्लाह ताला साहिबे कुन फयकुन है, उसके कुन कहने से क़यामत बरपा होगी, सर झुकाए कब्रों से लोग निकलकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, इसलिए हमारा आमाल का दफ्तर खोलेगा। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं। आज इस दुनिया में इंसान के अमाल मुख्तलिफ हैं, हर बंदा अपने हिसाब से जीता है, कोई नेक है और शरीफ नफ्स है, कोई जालिम जाबिर और बद किरदार है। चूँकि खालिक कायनात आदिल और हकीम है, और उसकी हिकमत का तकाजा है कि आमाल के मुताबिक फैसले हों, वरना तो जुल्म हो गया ना उन लोगों से जो सारी ज़िंदगी बचते रहे और वो मज़े में रह गए, जो मौज मस्ती करते रहे और वहाँ भी चले गए। तो क्या पता चला कि इंसान को गफलत की चादर उतारने और अक्ल और दानाई से काम लेने की दावत दी जा रही है इसमें, और मरने के बाद दोबारा जी उठने का तذکرہ सूरत इन्फितार की इब्तदाई 5 आयतों में भी है। इज़ समाउ उनफतरत वइज़ल कवाकिब उनतसरत वइज़ल बिहार उफज्जिरत वइज़ल कुबूर उबोसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत वखरत। नोट करिएगा, वइज़ल कुबूर उबोसिरत पे गौर कर लीजिए, जब कब्रों से निकाला जाएगा यानी कब्रें खोली जाएंगी, मुर्दे निकल कर बाहर आएंगे। मौत के बाद की ज़िंदगी के ऊपर शक करना गोया के कुरान पे शक है, क्योंकि कुरान पाक में कई मुकामात पर मौत के बाद की ज़िंदगी का जिक्र है। आपने इस बारे में देखा, फिर मौत का जिक्र आया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, पिछले बारे में भी था। तो इस दारे फानी में चंद दिन की ज़िंदगी गुजार कर हमारी ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू होगा, मौत के बाद बरज़ख़ की ज़िंदगी शुरू होगी और वो इस दुनिया से मुख्तलिफ होगी। अब आप कहते हैं हमें कुछ दलाइल लिखा दें ताकि अगर कभी कोई कुछ कहे तो हम दिखाएं। पहली बात है, मैं तो आपको बता देती हूँ, लेकिन आप ना दूसरों को बताइएगा, उसको मशवरा दें कि कुरान पढ़ो। कहाँ कहाँ है ज़रा सा देखिएगा, हयात बादल ममात पर कुरानी दलाइल यानी मरने के बाद जी उठने के दलाइल। पहली दलील सूरत बकरा आयत 28, कैफ तकफुरून बिल्लाही वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैही तुरजऊन, तर्जमा वाज़े है। दूसरी दलील है सूरत हज 66, वहुअल्लज़ी यहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूर। आप कहेंगे कि मौत का लफ्ज़ तो आ ही रहा है ना, समझ तो आ ही रहा है सबको तर्जमा, और हदीस भी ले लीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस हालत पर तुम अपनी ज़िंदगी गुजारोगे इसी पर तुम्हें मौत आएगी, और जिस हाल में मौत आएगी इसी हालत में रोज़े क़यामत उठाए जाओगे। ये मिशकातुल मसाबीह की रिवायत 182 है। अब कुछ लोग एतराज़ करते हैं कब्र से उठाए जाने पर, कुछ एतराज़ात हैं, तो वो क्या है? कुछ लोग पानी में डूब जाते हैं, कुछ को जानवर खाते हैं या जलकर राख हो जाते हैं, तो फिर वो कैसे उठेंगे? ये एक सवाल है। इंसानी जिस्म चाहे दफन हो या ना हो, रूह महफूज होती है। अल्लाह के कुन कहने से तमाम जिस्मानी ज़रूरत इकट्ठे होकर जिस्म की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। यानी अब जो लोग जला देते हैं, क्या वो बच गए? नहीं, किसी भी सूरत में होंगे। वो कुन फयकून से उनको जमा करेगा और दोबारा ज़िंदगी फिर इसी जिस्म से शुरू होगी। सूरत यासीन की आयत 78-79 शायद आपको ज़ुबानी भी याद होगी, जिसमें क्या आता है? काल मै युहयी लिज़ाम वही रमीम, कौन जिंदा करेगा उस हड्डी को जो पुरानी हो गई, बुसीदा हो गई? कुल युहयी हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, कह दो वही जिंदा करेगा जिसने इसको पहले किया था, क्योंकि वहुव बिकुल्ली खल्किन अलीम, वो तो हर तरह की तख्लीक और खल्क के काम को जानने वाला है। तो ये दलाइल मेरा ख्याल है काफ़ी हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला मरने के बाद हमें जिंदा करेगा। अब इसी से मिलती हुई जो इसका अगला स्टेप है, आठवीं शाख लीजिए, 8th ब्रांच ऑफ ईमान क्या है? कब्रों से उठने के बाद तमाम लोगों को एक ही जगह जमा किया जाएगा, इस पर ईमान लाना। इसको कहते हैं हशर। हशर, ठीक है, इसी से फिर नशूर भी है। चूंकि अल्लाह की सिफत अदल है, दुनिया में कुछ लोगों ने जुल्म किया, अब यकीनन जालिम को सजा मिलनी चाहिए, मजलूम को सब्र पर अजर मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने सारी जिंदगी सदका जारिया के काम किए, वहां जाकर पता चला कुछ भी नहीं मिला तो धोखा हो गया ना। और गुना छोड़ो, तुम्हें बड़ा कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, अब गए तो कुछ भी नहीं मिला। तो अल्लाह की सिफत अदल का तकाजा है कि मरने के बाद बंदों को जन्नत या जहन्नुम मिले। दलील लीजिए इब्ने माजा, रिवायत नंबर 203। आपने फरमाया, जिसने कोई अच्छा तरीका ईजाद किया और इस पर लोगों ने अमल किया, तो इसे इसके अमल का अजर व सवाब मिलेगा, और इस पर जो लोग अमल करें इनके अजर के बराबर भी उसे अजर मिलता रहेगा। इससे इनके अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी ना होगी। और जिसने कोई बुरा तरीका ईजाद किया, इस पर और लोगों ने भी अमल किया, तो इसके ऊपर इसका गुनाह होगा, और इस पर अमल करने वालों का गुनाह भी इसी के पर होगा, और गुनाहों में कमी ना होगी। यानी शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारिए। अब सवाल पैदा होता है कि मरने के बाद जब हम कब्रों से उठेंगे क्या होगा? हम सब पढ़ते हैं कि सूर फूका जाएगा। सूर कैसे फूका जाएगा? इसराफील के सूर फेंकने की कैफियत सूरह यासीन 48-63 का तर्जुमा ले लीजिए, कि ये लोग कहते हैं कि ये कियामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी? अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। दरअसल ये चीज़ जिसकी राह तक रहे हैं, वो बस एक धमाका है जो यकायक इन्हें ऐन इस हालत में धर लेगा, जब ये दुनिया के मामले में झगड़ रहे होंगे, और उस वक्त ये वसीयत तक न कर सकेंगे, न अपने घरों को पलट सकेंगे। ये एक सूर फूका जाएगा, और यकायक ये अपने रब के हजूर पेश होने के लिए अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठा खड़ा किया? ये वही चीज़ है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था, और रसूलों की बात सच्ची थी। इससे आगे जन्नत और जहन्नुम का तذکرہ है, लेकिन इतने हिस्से से आपको यकीन आ गया होगा कि मरने के बाद जीना भी है और जीने के बाद जाना भी है मैदाने हशर में। तो खुलासा, एक दिन सारी दुनिया फना हो जाएगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हिसाब किताब शुरू होगा। अल्लाह सब को ज़िंदा कर रहा है, और नेकियों पे नेकों को अजर और बदियों पे बदों को सज़ा मिलेगी। सूरत आल इमरान में 9 आयत में आप पढ़ चुके हैं, रब्बना इन्नका जामिउ अन्नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद। ए परवरदिगार, तू उस रोज़ जिसके आने में कुछ भी शक नहीं, सब लोगों को अपने हजूर जमा करेगा, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। अब एक सवाल जहनों में आता है कि यौमे हिसाब कितना को लंबा होगा? यानी छोटे दिन होंगे, लंबे होंगे, कोई डे सेविंग का फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो इस पे सूरत मारिज की आयत नंबर 4 ले लीजिए, तारुजुल मलाइकत व रूह इलैही फी यौमिन कान मिकदारुहु 50,000 सना। ये 50,000 सना ले लें कि उस दिन की मकदार 50,000 साल होंगे। कितनी सदियाँ बनती हैं, सोचिएगा। क्यामत के दिन होगा क्या? तमाम मखलूक एक ही जगह जमा होगी, सबका हिसाब किताब होगा, बेहद तवील दिन होगा, लोग परेशान हाल होंगे। हाँ, लेकिन मोमिन के लिए ये दिन मुख्तसर और आसान होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी से एक मौके पे सहाबा ने सवाल किया था, तो आपने फरमाया कि क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह फरमाता है, यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने होंगे। तो किसको अल्लाह के सामने खड़े होने की ताकत होगी? आपने फरमाया क़यामत का दिन मोमिन के लिए आसान कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो दिन इस पर फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बकदर रह जाएगा, यानी नमाज पढ़ने में जितना वक्त लगता है। 4576 नंबर हदीस है मिश्कात की। तो सारी बात का खुलासा, मरना है, मरने के बाद कब्र में जाना है, कब्र का अजाब और जजा बरहक है, और उसके बाद अगली बात के मरने के बाद उठना भी है, और उठने के बाद फिर मैदान हशर से गुजरते हुए आगे जाना है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारे मराहल पे सुरखरू कर दे। आज के पारे की नज़र, आज के थीम के साथ शेर, शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, यानी मोमिन अपने दिल में शहादत की तलब लेकर घर से निकलता है, इससे ज़्यादा और कुछ उसका न मतलूब है न मकसूद, न माले गनीमत चाहिए और ना अपने मुल्क को खुला करना है। अल्लाह करे कि हम सब इस पे रहें। आज की दुआ दुश्मन से हिफाजत की दुआ है, हम सबको सरहदी दुश्मनों और ज़हनी दुश्मनों को जो हमारे बच्चों के दिमागों पे हमले कर रहे हैं, तसव्वुर में रखकर इस दुआ को ना सिर्फ ये कि पढ़ना है बल्कि मांगना भी है और याद करना है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नाऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम, ए अल्लाह बेशक हम इनको करते हैं, आपको करते हैं, इधर नहूर वो जगह जहाँ नहर करते हैं, यानी आप दुश्मनों को आपके हवाले करते हैं, ये मुराद है। व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से अमल वाला बना दे। ये था आज का पारा, आज की छोटी बड़ी बातें, अल्लाह ताला अमल में आगे बढ़ाए। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।